एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं गैस्टन बैचलार्ड की एक बहुत ही खास किताब द पोएटिक्स ऑफ स्पेस पर। कुछ लोग इसे स्थान का काव्यशास्त्र भी कहते हैं।
हाँ, और ये किताब हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से इतनी जुड़ी है ना, मतलब घर, कमरे, कोने।
बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि घर तो बस चार दीवारें हैं, रहने की जगह।
सही बात है, लेकिन बैचलर्ड हमें एक अलग ही नजरिया देते हैं। वो बताते हैं कि ये जगह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी चेतना, हमारी यादों, हमारी कल्पना, इन सब का हिस्सा है।
मतलब ये जगहें हमें बनाती हैं एक तरह से।
हाँ, कह सकते हैं ये वो जगहें हैं जहाँ हम सपने देखते हैं, जहाँ हम महफूज महसूस करते हैं, हमारी पहचान इनसे जुड़ी होती है।
तो चलिए आज इसी दिलचस्प सोच की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि कैसी ये जगहें हमारी अंदरूनी दुनिया को शेप देती हैं।
और ये समझने के लिए थोड़ा लेखक को जानना भी जरूरी है, गैस्टन बैचलार्ड। उनका सफर बड़ा ही अनोखा था।
हाँ, मैंने सुना वो पोस्टमैन थे पहले।
सोचिए, फ्रांस में पोस्टमैन, घर घर जाना, लोगों को देखना, उनके घरों को देखना, शायद वहीं से कुछ शुरुआती आइडियाज आए हों।
पोस्टमैन से फिलोसोफर, कमाल है।
बिल्कुल, बाद में उन्होंने विज्ञान पढ़ा, डॉक्टरेट की, और शुरू में साइंस फिलॉसफी पर ही लिखा।
अच्छा, तो पहले लॉजिक, रीजन।
हाँ, लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट पूरी तरह बदल गया। वो कल्पना, सपनों, कविता की दुनिया की तरफ मुड़ गए। वो आग, पानी, हवा, धरती, इन चीजों को काव्यात्मक नजरिए से देखने लगे।
तो मतलब एक वैज्ञानिक दिमाग भी और एक कवि का दिल भी, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत रेयर है।
हाँ, और यही चीज द पोएटिक्स ऑफ स्पेस को इतनी खास बनाती है। वो फिजिकल स्पेस, जैसे हमारा घर, और हमारी इनर वर्ल्ड, मतलब कल्पना और यादें, इनके बीच एक पुल बनाते हैं।
और वो कल्पना को सिर्फ टाइम पास नहीं मानते थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इसे एक फंडामेंटल ह्यूमन पावर मानते थे, दुनिया को महसूस करने का, समझने का एक तरीका।
तो फिर ये किताब द पोएटिक्स ऑफ स्पेस असल में है किस बारे में, संक्षेप में बताएं जरा।
देखिए, सीधी सी बात है, ये किताब उन जगहों के मतलब को टटोलती है जहां हम सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। हमारा घर, बचपन का कमरा, कोई खास कोना। बैचलर्ड ये जानना चाहते हैं कि ये जगहें हमारे अंदर कैसे बस जाती हैं, कैसे ये हमारे दिन के सपनों को, हमारी कल्पना को जगाती हैं, कैसे ये हमारी पहचान का हिस्सा बनती हैं।
अच्छा, और ये साइकोलॉजी से अलग कैसे है, जैसे फ्रॉइड वगैरह की थ्योरी से?
हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। देखिए, फ्रॉइड जैसे विचारक अक्सर जगहों को, जैसे तहखाने को, दबी हुई इच्छाओं या डर से जोड़ते थे।
हाँ, वो नेगेटिव चीजों पर फोकस करते थे।
बिल्कुल, लेकिन बैचलर जानबूझकर सुखद स्थानों पर ध्यान देते हैं। वो जगह है जहां हमें खुशी मिलती है, आराम मिलता है, सुरक्षा महसूस होती है। उनका मानना था कि इन पॉजिटिव एहसासों को समझना भी उतना ही जरूरी है।
इसके लिए उन्होंने वो शब्द भी दिया था, टोपो एनालिसिस।
हाँ, टोपो एनालिसिस मतलब हमारे अंतरंग जीवन के स्थानों का अध्ययन, पर एक पॉजिटिव नजरिए से। ये किसी बीमारी की जड़ ढूंढना नहीं है, बल्कि उन जगहों से मिलने वाली ताकत और सुकून को समझना है।
तो ये किताब एक तरह से हमारे मन के घर की यात्रा है, तहखाने से अटारी तक,
कह सकते हैं। बिल्कुल, तहखाने का अंधेरा, रहस्य, और अटारी की रोशनी, खुलापन।
चलिए थोड़ा और खोलते हैं इसे। किताब की शुरुआत में वो अपने तरीके के बारे में बताते हैं, घटना विज्ञान।
हाँ, फिनोमेनोलॉजी, इसका मतलब है वो चीजों के बाहरी विश्लेषण से ज्यादा उसके अनुभव पर जोर देते हैं। सवाल ये नहीं कि ये कमरा सुरक्षित क्यों है, बल्कि ये कि इस कमरे में सुरक्षित महसूस करना कैसा होता है। वो उस पहले ताजे एहसास को पकड़ना चाहते हैं।
तो इसी नजरिए से वो घर को देखते हैं।
बिल्कुल, घर सिर्फ एक इमारत नहीं, वो दुनिया में हमारा कोना है, हमारा पहला ब्रह्मांड, जहां से हमारी दुनिया शुरू होती है।
और वो घर की वर्टिकैलिटी की बात करते हैं, तहखाना और अटारी।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तहखाना यानी सेला, वो गहरा है, रहस्यमयी, हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ। और अटारी यानी गैरेट या एटिक, वो खुली है, आसमान के नीचे, सोचने, विचारने की, तर्क की जगह।
तो ये सिर्फ ऊपर नीचे की मंजिलें नहीं है?
नहीं, ये हमारे मन की परतें हैं एक तरह से।
और घर बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ता है?
हाँ, ये भी एक अहम बात है। बैचलर्ड कहते हैं कि घर हमें दुनिया से काटता नहीं, जोड़ता है। सोचिए, बाहर तेज तूफान है, और आप अंदर खिड़की से देख रहे हैं।
महफूज महसूस करते हुए।
हाँ, तो घर आपको सिर्फ बचाता नहीं बल्कि उस तूफान की शक्ति को महसूस करने का मौका भी देता है बिना डरे। अंदर का सुकून और बाहर की उथल पुथल दोनों का एहसास गहरा हो जाता है।
और खिड़कियां, दरवाजे,
वो सिर्फ विवान छेद नहीं है, वो अंदर और बाहर के बीच डायलॉग का जरिया है। वो हमें दुनिया से जोड़ते भी हैं और हमारी प्राइवेसी भी बनाए रखते हैं।
घर के बड़े स्ट्रक्चर से फिर वो छोटी चीजों पर आते हैं, दराजें, संदूकें।
हाँ बिल्कुल, दराजें, संदूकें, अलमारियां, ये सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं है, ये सीक्रेसी, छिपे हुए खजानों, यादों के सिंबल हैं।
एक बंद दराज में हमेशा कुछ रहस्य होता है ना?
बिल्कुल, उसे खोलना एक खोज की तरह है। जैसे किसी की पुरानी चिट्ठी मिल जाए या कोई बचपन का खिलौना, ये चीजें हमारी यादों को फिजिकली संभालती हैं।
और कोनों के बारे में क्या? वो तो बहुत साधारण सी जगह लगती है।
लगती है, पर बैचलार्ड उसे असाधारण बना देते हैं। कोना सिर्फ छिपने की जगह नहीं, वो स्थिरता का आश्रय है, अ हेवन ऑफ इमोबिलिटी।
स्थिरता का आश्रय मतलब?
जब हम परेशान होते हैं या कुछ सोचना चाहते हैं तो अक्सर कोना ढूंढते हैं ना। वो हमें दो तरफ से घेर लेता है, एक बाउंड्री देता है, एक ठहराव जहां मन भटकने के बजाय ठहर सकता है।
हाँ ये तो है।
वो एक तवी को कोट करते हैं, मैं वो स्थान हूँ जहां मैं हूँ। कोने में हम अपने होने के एहसास से ज्यादा जुड़ जाते हैं।
ये तो बहुत कह रहा है, मैंने कभी कोने के बारे में ऐसे सोचा नहीं।
और फिर वो प्रकृति से उदाहरण लेते हैं, घोंसला और शंख।
हाँ,
घोंसला यानी नेस्ट, वो सुरक्षा की सबसे पुरानी, सबसे आदिम छवि है। और दिलचस्प बात यह है कि चुड़िया उसे अपने शरीर से बनाती है, अंदर से बाहर की ओर, एक ऑर्गेनिक घर।
ये हमें याद दिलाता है कि घर को हमारे वजूद का हिस्सा होना चाहिए।
बिल्कुल। और शंख यानी शेल, वो थोड़ा अलग है, वो पीछे हटने, खुद को बचाने का प्रतीक है, जैसे कोई कछुआ या घोंगा अपने खोल में चला जाता है।
अपने खोल में सिमट जाना, ये तो अक्सर नेगेटिव माना जाता है।
माना जाता है, पर बैचलार्ड कहते हैं ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कभी कभी दुनिया की भागदौड़ से कटकर अपनी एनर्जी बचाना, खुद को रिचार्ज करना जरूरी होता है। आज की दुनिया में तो शायद हम सबको अपने शंख की जरूरत पड़ती है।
सही बात है। और फिर वो स्केल के साथ खेलते हैं, छोटा और बड़ा।
हाँ, मिनिचर और इमेंसिटी, लघु और विशालता। एक तरफ लघु, कैसे एक छोटी सी चीज जैसे गुड़िया घर या बोतल में बंद जहाज हमारी कल्पना में पूरी दुनिया बसा सकती है, हमें उसे ध्यान से देखना पड़ता है और हम उसमें खो जाते हैं।
अच्छा, और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ है अंतरंग विशालता, इंटीमेट इमेंसिटी। ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, ये आइडिया कि हम बड़ी विशाल चीजों को जैसे रात का आसमान या समुद्र देखकर सिर्फ छोटा महसूस ना करें बल्कि उन्हें अपने अंदर महसूस करें।
विशालता को अपने अंदर महसूस करना, ये कैसे?
कल्पना के जरिए, जैसे तारे देखते हुए आप महसूस करें कि आप उस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। वो विशालता आपको डराती नहीं बल्कि आपके अंदर की गहराई को बढ़ाती है, आपको ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा जिंदा महसूस कराती है।
वाह, दुनिया बड़ी है पर हम में ये गहरी है, ऐसा कुछ?
हाँ बिल्कुल। और आखिर में वो गोलाई यानी राउंडनेस की बात करते हैं, जो पूर्णता, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, एक पूरा वजूद।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश क्या है इस किताब के?
हाँ देखिए, पहला तो यही कि कल्पना सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। किसी जगह की छवि या याद हम पर इसलिए असर करती है क्योंकि वो कल्पना अपने आप में एक ताकत है, आत्मा की सीधी आवाज। वो अनुभव ही मायने रखता है।
मतलब उसका कारण ढूंढने से ज्यादा जरूरी है उस अनुभव को महसूस करना।
बिल्कुल।
दूसरी बात, बचपन के घर का महत्व, वो हमारा पहला ब्रह्मांड है, हमारी सुरक्षा, हमारे अपनेपन की समझ वहीं से शुरू होती है और वो घर हमेशा हमारे अंदर रहता है।
जैसे वो कहते हैं, हमारे दिलों में एक घोंसला है
जो किसी भी असली घोंसले से ज्यादा जीवित है। हाँ, ये अंदरूनी घर हमें जिंदगी भर सहारा देता है। शायद हमारे यहाँ भारत में, जहाँ पुराने बड़े परिवार होते थे, दादा दादी के घर की यादें वो इसी तरह काम करती हैं।
तीसरा, उनका टूपॉय एनालिसिस का आइडिया, यानी सुखद जगहों के जरिए मन को समझना। ये थोड़ा अलग नजरिया है साइकोलॉजी का। हाँ, सिर्फ ट्रॉमा पर फोकस करने के बजाय उन जगहों को याद करना जहाँ हमें खुशी मिली, आराम मिला, प्रेरणा मिली, जैसे घर में पूजा का कोना या बालकनी में वो खास कुर्सी, ये सुखद स्थान हमें ताकत देते हैं।
जैसे बैचलर ने कहा, घर दीवा स्वप्न को आश्रय देता है।
घर सपने देखने वाले की रक्षा करता है, घर शांति से सपने देखने देता है। हाँ, घर का काम सिर्फ पनाह देना नहीं, मन को सुकून देना भी है।
चौथा, दीवा स्वप्न यानी रेवरी को एक क्रिएटिव चीज मानना।
हाँ, दिन में सपने देखना टाइम वेस्ट नहीं है, ये मन की गहराइयों में उतरने का, नए आइडियाज खोजने का तरीका हो सकता है। घर के कोने, आराम कुर्सियां, ये सब सपने देखने के घोंसले हैं।
और पांचवा, वो स्थान के द्वंद्व की बात करते हैं, अंदर बाहर छोटा बड़ा।
सही, हमारा अनुभव इन्हीं तनावों से बनता है। जैसे तूफान के समय अंदर की शांति ज्यादा महसूस होती है। उन्होंने कहा भी, घर तूफान के बीच शांति का गढ़ है। ये कॉन्ट्रास्ट ही अनुभव को गहरा बनाता है।
और आखिरी बात, वो कवियों को बहुत अहमियत देते हैं।
हाँ, उनके लिए कवि ही आत्मा और स्थान के रिश्ते के असली एक्सपर्ट हैं। वो कविताओं को सिर्फ उदाहरण नहीं बल्कि सबूत की तरह यूज करते हैं, क्योंकि कवि उन एहसासों को पकड़ लेते हैं जो शायद लॉजिक से परे हैं।
तो ये सब तो बड़ी गहरी और काव्यात्मक बातें हैं, इनका हमारी आम जिंदगी में क्या लेना देना है? क्या ये प्रैक्टिकल भी हैं?
बिल्कुल है। पहली बात तो ये हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए काम आ सकती हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं, बचपन की कौन सी जगह मुझे सबसे महफूज रखती थी, आज कौन सी जगह मुझे सुकून देती है, कहाँ मुझे सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं। ये सवाल हमें खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं।
अपनी खुद की टोपो एनालिसिस करना एक तरह से।
हाँ, और फिर हम अपने आज के घरों में जानबूझकर सुखद स्थान बना सकते हैं, चाहे वो पढ़ने का एक छोटा सा कोना हो या बालकनी में कुछ पौधे लगाकर बैठने की जगह। आज की भागदौड़ में ऐसी जगह बहुत जरूरी है
मेंटल वेलनेस के लिए।
बिल्कुल। फिर आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन के लिए तो ये किताब जैसे जरूरी टेक्स्ट है। ये याद दिलाती कि बिल्डिंग से फंक्शनल न हो, उनमें रहने वाले की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। घर ऐसे हों जिनमें आत्मा हो, सुकून हो।
सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं, रहने में अच्छे लगें, ये जरूरी है।
हाँ, और क्रिएटिव लोगों के लिए, राइटर, पेंटर, फिल्म मेकर, उनके लिए ये खजाना है। ये सिखाता है कि कैसे स्पेस का इस्तेमाल करके मूड बनाया जाए, इमोशंस जगाए जाएं।
और थेरेपी वगैरह में भी इसका कुछ रोल हो सकता है।
हाँ, एक मानवीय अप्रोच, सिर्फ दर्दनाक यादों पर फोकस करने के बजाय सुरक्षित और खुशहाल जगहों की यादों को एक्सप्लोर करना, ये ताकत का सोर्स बन सकता है।
और सबसे बेसिक लेवल पर ये शायद हमारे देखने का तरीका बदल देता है।
बिल्कुल, साधारण चीजें असाधारण लगने लगती हैं। एक पुरानी अलमारी रहस्यों का दरवाजा बन जाती है, कमरे का कोना एक पवित्र स्थान। हम अपने आसपास की दुनिया के प्रति ज्यादा जागरूक, ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं।
तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि हमारे घर, हमारी जगहें, ये सिर्फ बेजान चीजें नहीं हैं।
नहीं, ये हमारी पहचान बनाने में एक्टिव पार्टनर है। हम सिर्फ इन जगहों में नहीं रहते, इनके साथ जीते हैं। हम कहाँ और कैसे रहते हैं, ये हमारी सोच, यादों, सपनों, सबको प्रभावित करता है।
सुनने वालों के लिए क्या टेकअवेज हो सकते हैं?
मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि अपने दिवा स्वप्नों को, अपनी कल्पना को थोड़ी जगह दें। दूसरी, सिर्फ यूटिलिटी के आधार पर बनी जगहों पर थोड़ा सवाल उठाएं, क्या उनमें सुकून है? और तीसरी, अपनी कहानी को अपनी पसंदीदा जगहों से जोड़कर देखने की कोशिश करें, अपनी खुद की टोपो एनालिसिस करें।
मेरे लिए तो कोने वाली बात सबसे यादगार रही। एक इतनी अनदेखी की जाने वाली चीज में इतना गहरा मतलब छिपा है।
और मुझे वो अंतरंग विशालता का आइडिया बहुत पसंद आया। ये सोचना कि हम विशालता से डरने के बजाय उसे अपने अंदर महसूस करके खुद को बड़ा बना सकते हैं, ये बहुत पावरफुल है। ये किताब याद दिलाती है कि सबसे गहरे अनुभव अक्सर सबसे साधारण जगहों में मिलते हैं।
और शायद ये भी सोचने वाली बात है कि बचपन का घर तो हमें मिलता है, पर बड़े होकर हम जो जगहें चुनते हैं या बनाते हैं, वो शायद इस बारे में ज्यादा बताती हैं कि हम असल में क्या बनना चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं।
बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।